अब आज हम पढ़ेंगे आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों का किस्सा। वत्सलू अलैहिम, पढ़ के सुनाइए इन पर, यानी ए नबी आप तिलावत कीजिए उन पर। क्या नबा, नबा कौन किस खबर को कहते हैं, जो अहम खबर, खास खबर हो, एक कोई अहम वाकया है। किसका, अब नई आदम, अब नई मैंने आपको बताया दो बेटों के लिए, असल में नून गिर गई भी है लेकिन या साकिन बता रही कि आगे नून भी थी, जबर और या साकिन के, मैंने आपको बताया था ना कि जब जबर और या साकिन आए, यानी पहले जैसे मिसाल के तौर पे अगर आपको कोई कोई अब लफ्ज मेरे जहन में नहीं आ रहा कि मसल और दईन, और दईन क्या है, तो दो जमीनें, दईन आपको खुद बताएगा कि दो की बात हो रही है क्योंकि दौद के ऊपर जबर और फिर उसके बाद या साकिन है, ठीक है। तो यहां से भी हमें पता चला दो बेटों की बात है जो आदम अलैहिस्सलाम के थे। तो क्यों कहा गया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो सारी बातें बताते थे, पढ़ के सुनाते थे, लेकिन खास तौर पे इसलिए कहा गया कि ये एक अहम खबर है, ये एक अहम वाकया है, तो इसलिए ताकीद के साथ कहा गया कि आप पढ़ के सुनाएं इन लोगों को खबर दो बेटों की, आदम अलैहिस्सलाम की। क्यों दो बेटों की, किनको पढ़ के सुनाएं, वैसे तो सबको ही पढ़ के सुनाएं लेकिन खासुल खास जो चूंकि पीछे बात बनी इसराइल की आ रही है, तो उनके अंदर कौन सी बीमारी थी जिसकी वजह से वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते थे, वो हसद की बीमारी थी। तो हसद का अंजाम क्या होता है वो भी पता चल जाएगा, इसी तरह मुशरिकी ने मक्का में तकब्बुर की का मसला था वो भी पता चल जाएगा आपको कि उसका बद अंजाम क्या होता है। तो इन लोगों को ये किस्सा बता दें ताकि इनको समझ आए, और किस्सा कैसे बताना है, बिल हक, साथ हक के बताना है। आप देखें कि किस्सा गोई आम देखते भी हैं, लोग कहानियां सुनाते हैं, आप ड्रामों में, फिल्मों में, अफसानों में, नावलों में बहुत सारी कहानियां पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, मगर अक्सर कहानियां जो होती हैं बेसलेस होती हैं, उनमें बिल्कुल कोई सच्चाई नहीं होती, लोगों ने खुद ही लिख लिख के घड़ घड़ के रखी होती, ये भी एक झूठ की किस्म है ना, और हम उस झूठ को भी देखते हैं और मजे करते हैं, उसके बाद ये हुआ, उसके बाद भाई एक बंदे ने अपने दिमाग से बैठ के सोचा कि मैं ऐसे करता हूँ, ऐसे लिखता हूँ, तो इसमें बड़ी थ्रिल होगी, इसमें लोग तो बिलबिला उठेंगे, इसमें कोई रोने लगेगा, इसमें इमोशंस ये डाल दो, तो वो तो इस तरह करके चीजें लिखते ही हैं, और हम अपना वक्त इसके अंदर कितना जाया करते हैं कि हम बस उनको देख देख के उन्हीं को डिस्कस किए जाते हैं, उन कहानियों को जिनका कोई सर पैर नहीं है, जिनका कोई यानी उनमें सच्चाई है ही नहीं। अब हम कहते हैं नहीं हम तो सबक लेने के लिए करते हैं, तो सबक लेने के लिए तो कुरान है जो सबसे बड़ा इंसान को नसीहत करने वाला है, जिक्र इसका नाम है, या दिहानी कराने वाला। तो बिल हक यहां पे आया लफ्ज जिसका माना है सच्चाई के साथ और बा मकसद, मकसद के साथ आप बयान करें। तो मैंने आपको बताया कि अक्सरियत किस्सों की बिल्कुल झूठ पे मगनी होती है, जो किस्से बार दफा कुछ सही भी होते हैं उनमें भी बहुत सारा झूठ डाला होता है, कई इमोशंस, कई सस्पेंस, कई रोमांस, कई थ्रिल, ताकि लोग अट्रैक्ट हों, जाहिर है तो उसके लिए वो बहुत सारा मिर्च मसाला डाल के फिर आपको दिखाते हैं। तो अक्सरियत ये इन चीजों की सच नहीं होती, लेकिन अल्लाह ताला जब कोई बात बयान फरमाते हैं कुरान पाक में तो फिर आप देखें साथ हक के, और भी कई किस्सों में ये लफ्ज आया हुआ, जैसे सूरह कहफ में जो कहफ वालों का किस्सा है उसमें भी ये लफ्ज आया कि बिल्कुल सच्ची बात, और दूसरा यानी मकसद के साथ। अब किस्सा गोई अक्सर किस लिए होती, जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट, जस्ट टाइम पासिंग के लिए, ये टाइम पासिंग के लिए नहीं है, ये ऐसे ही एंटरटेनमेंट के लिए नहीं कि चलो आ जाओ आपको आज उनकी कहानी सुनाएं जैसे हम बच्चों को बिठा देते, ये नहीं, मकसद है इसका कोई, इस मकसद को भी सामने रखना है कि हम उससे कुछ सीखें अपने लिए, और ये सच्ची बात है बिल्कुल, इसमें जरा सी भी कोई यानी इधर उधर ऊंच नीच नहीं है। ये क्या हुआ था, आप किस्से की तरफ आते, इज जब भी आता है तो मैंने आपको बताया था कि ये माना होता है कि वो जमाना याद करें जब ऐसा हुआ था, क्या हुआ था, कर रबा कुर्बान, उन दोनों ने कुर्बानी की, एक कुर्बानी फतुकुबिला तो कबूल कर ली गई, मिन अहदिहिमा उन दोनों में से एक से, वलम युतकब्बल मिन अलाखर और दूसरे से कबूल नहीं की गई। तो अब क्या हुआ, अब आप देखें अपने इन ड्रामों और इनमें तो देखते होंगे बहुत ही हसद बोझ और इस किस्म की कहानियां बनाई होती हैं झूठी झूठी, लेकिन यहाँ पर एक सच्ची कहानी है जिसके अंदर बताया जा रहा है कि ये दो भाइयों का किस्सा है जिनमें से दोनों ने कुर्बानी की लेकिन एक की कुर्बानी कबूल हुई और एक की नहीं कबूल। अब इसके पहले बैकग्राउंड देख लेते हैं कि क्या ये बात थी। बात दरअसल ये हुई कि ये थे दो बच्चे आदम अलैहिस्सलाम के, और आदम अलैहिस्सलाम के वक्त में ऐसा हुआ करता था कि उनके यहाँ एक वक्त में दो औलादें पैदा होती थी, यानी ट्विंस बच्चे पैदा होते थे, एक लड़का और एक लड़की। और जो एक वक्त में ट्विंस पैदा होते थे उनकी शादी दूसरे वक्त में दूसरे हमल से जो ट्विंस पैदा होने वाले थे उनके साथ की जाती थी, यानी जो एक वक्त में पैदा हुए वो आपस में बहन भाई समझे जाते थे और जो दूसरे वक्त में पैदा हुए होते थे उनके साथ उनका निकाह कर दिया जाता था। अब ऐसा क्यों था, कुछ लोगों के लिए ये भी होगा हाय वो तो बहन भाई हुए फिर ये क्यों ऐसा कर दिया। देखिए जिस जमाने की बात हो रही है उस वक्त जमीन पे कोई इंसान नहीं थे, ठीक है, और ये सिस्टम बताया गया उस वक्त, ये मुहर्रमात का वो सिस्टम थोड़ी था जो आज की बात आप कर रहे हैं, उस वक्त तो कोई था ही नहीं जमीन पे, तो ये एक तरीका निकाला गया जिससे इंसान दुनिया में फैले, ठीक है, वरना तो आदम अलैहिस्सलाम की भी तो पसली से हजरत हव्वा पैदा हुई ना, तो अब आप कह देंगे कि वो तो उनका हिस्सा थी तो उनकी बीवी कैसे बन गई। तो इस किस्म की हमें नहीं सोच रखनी बल्कि हमें ये समझना है कि वो हालात क्या थे। तो अब एक लड़का और एक लड़की पैदा होते थे हर दफा और उनकी शादी वो दूसरे ट्विंस के साथ कर दी जाती थी। अब ऐसा हुआ कि आदम अलैहिस्सलाम के यहाँ जो जो दो बेटे पैदा हुए उनमें से एक की शादी जिसका नाम काबिल था उसकी शादी हाबील के साथ पैदा होने वाली लड़की के साथ की जानी थी, मगर जो हाबील के साथ लड़की पैदा हुई थी वो बहुत ज्यादा खूबसूरत नहीं थी जिसकी वजह से उसने उससे शादी से इनकार कर दिया और वो चाह रहा था कि मेरी शादी जो मेरे साथ लड़की पैदा हुई है उसके साथ कर दी जाए, ठीक है, क्योंकि वो ज्यादा खूबसूरत थी। अब इसके साथ तो किसकी होनी थी, हाबील की शादी होनी थी, लेकिन ये चाह रहा था कि मेरी हो जाए। अब आदम अलैहिस्सलाम के पास गया और उसने उनसे कहा तो उन्होंने मना कर दिया, लेकिन आप देखें जब जिद होती है बच्चों की तो फिर किस तरह पीछे पड़ जाते हैं। तो जब वो पीछे पड़ गया तो उन्होंने कहा कि फिर ठीक है ऐसा करो कि तुम दोनों कुर्बानी करो, जिसकी कुर्बानी कबूल हो जाएगी उसके साथ इस लड़की की शादी कर दी जाएगी। अब कुर्बानी कबूल हो जाएगी इसका कैसे पता चलेगा, हमारे यहाँ तो इसका कुछ पता नहीं चल सकता, मगर उस जमाने में बल्कि बनी इसराइल तक यही सिस्टम रहा कि एक कुर्बान गाह होती थी वहां पर जो भी किसी ने कुर्बानी करनी होती थी वो रख दी जाती थी, जिसकी कुर्बानी कबूल होनी होती थी तो आसमान से आग आती थी और उस पे पड़ जाती थी और फिर वो आग उसको भस्म कर देती जला देती, तो पता चल जाता था ये कुर्बानी कबूल होगी। देखिए उस वक्त तो वैसे भी कोई गरीब गुरबा तो थे नहीं जिनको जाके कुर्बानियों की चीजें देनी थी, ठीक है, तो वो आग से वो जल जाती थी, तो इसका मतलब यही समझा जाता था जिसकी चीज रखी हुई वैसी की वैसी पड़ी रह जाती थी तो वो इसका मतलब है उसकी कुर्बानी कबूल नहीं हुई। और इसका हमें सूरह आले इमरान में भी पता चलता है ना, हमने पढ़ा था ना कि कैसे हमें पता चलता है कि बनी इसराइल तक यही सिस्टम था, उसी को याद है ये आयत अल्लदीना कालू इन्नल्लाह अहदा इलैना अल्ला नुमिन लि रसूल हत्ता यातीना बिकुर्बानिन ताकुलहु नार, कि जब तक वो रसूल हमारे पास वो कुर्बानी ना लेकर आए जो जिसको आग खा जाए हमने नहीं मानी, हमने तो अल्लाह से यह आयत किया। तो ये कुरान से भी दलील पता चलती है कि ऐसे हुआ करता था। तो अब ये दोनों ने कुर्बानी की, काबिल जो था वो जमीन पे काम करता था खेती बाड़ी का काम करता था, हाबील जो था उसने जानवर पाले हुए थे। अब कहा जाता है कि हाबील ने तो बड़ा अच्छा एक जानवर लिया और उसको कुर्बानी के लिए रखा। और काबीर ने, जो कि खेती बाड़ी करता, उसने एक बड़ा सा ढेर वल्ले का लिया और उसको रख दिया। अब एक की कुर्बानी कबूल हो गई और वो था हाबील, जिसने वो जानवर रखा था, और काबिल की कुर्बानी कबूल नहीं हुई। कहा जाता है कि गल्ला तो उसने रखा था, लेकिन नंबर वन क्वालिटी का नहीं रखा था, कम दर्जे का रखा था। और हाबील ने बाज जगह आता है दो बेहतरीन जानवर, बाज जगह एक गाय का भी जिक्र आता है। इस तरह की बातें आती हैं कि बाहर क्या, उसने बहुत ही उम्दा जानवर रखा। अब देखें कि अल्लाह ताला की, हाँ, एक तो ये था कि आप देखते हैं कि अल्लाह ताला को किसी के ना जानवरों की जरूरत है, ना उसके कोई गोश्त, ना कोई चीज की जरूरत है। जैसे हम कुर्बानी के जानवरों के बारे में भी पढ़ते हैं ना कि अल्लाह ताला को इनका खून, इनका गोश्त नहीं पहुंचता, उसको तो तुम्हारा तकवा पहुंचता है। और इस तरह हम चौथे पारे के स्टार्ट में भी पढ़ चुके हैं, लन तनालो बिर्रा में, कि जब तक तुम वो नहीं खर्च करोगे जो तुम्हारी पसंदीदा महबूब चीज है। अब वो जो भी चीज है, मगर जो तुम्हारी महबूब चीज है, जब तक तुम वो नहीं अल्लाह के रास्ते में खर्च करोगे। आप देखें, अक्सर हम जब अल्लाह के रास्ते में खर्च करने लगते हैं, कुछ कुर्बानी करने लगते हैं, तो रद्दी चीज देते हैं, रद्दी चीज। मसलन है, अगर कपड़े देने लगेंगे तो बिल्कुल ही जो इतने घिस गए हों कि वो तो मतलब फट गए हों, मेले कुचैले हो गए हों, बिल्कुल वो बोसीदा हो चुके हों, तब उनको देते। ये नहीं मैं कह रही कि पुराना कपड़ा ना आप दें, जरूर दें पुराना कपड़ा। बाज दफा आपका पुराना कपड़ा हो सकता है पता नहीं किसी के लिए कितना नया हो ना, लेकिन नया भी कभी दिया करें ना। अल्लाह ताला ने फरमाया तुम नेकी को पहुंच नहीं सकते जब तक अपनी महबूब चीज अल्लाह के रास्ते में ना दो। इस तरह वो वाला सालन जो 4 दिन फ्रिज में पड़ा रहा हो और बिल्कुल सड़ने वाला, उसको किसी को भेज देते। ऐसे नहीं है, आप किसी को खैरात कर दें वो अगर खाने के काबिल है, ऐसा नहीं कि आप उसको गार्बेज ही करें, लेकिन अच्छी चीज भी तो कभी दिया करें ना। इसी तरह आप देखिए अपनी जिंदगी में से हम कौन सा वक्त है जो अल्लाह के लिए कुर्बान करते हैं, बताइए। सबको पता है जब बूढ़े हो जाएंगे तो कर लेंगे, यानी जो बिल्कुल रद्दी लाइफ है जिसमें आपको दुनिया भी रिटायर कर देती है, कहती है अब आप काम करने के काबिल नहीं है, अब आप घर बैठ जाएं, आपको घर में ही हम पेंशन दे दिया करेंगे, अब आपको जॉब पे आने की जरूरत नहीं है, तब हम वो वाला अपना जिंदगी का फेज कहते हैं अब ये रद्दी लाइफ अल्लाह के लिए। ये नहीं मैं कह रही कि उस वक्त ना आप अल्लाह के लिए आए, चलो कोई उस वक्त भी आ जाए उससे तो भला ही है जो ऐसे ही मर जाए, लेकिन कहने का मकसद ये है कि अल्लाह ताला के लिए बेहतरीन चीज निकालना जरूरी है। अल्लाह ताला आपके जज्बात को देखता है। जवानी जो बेहतरीन जिंदगी का वक्त है वो तो दुनिया को दे देना, और जब रद्दी टाइम शुरू हो जाए जिसमें 1,000 बीमारियां लग जाए, जिसमें चलने के काबिल ना हो, आंखें कमजोर हो जाए, कानों से सुने नहीं, हाथ कांपने लगे, तो कहें अब ये जिंदगी अल्लाह के लिए। सोचा भी करें कि हम अल्लाह को देने के लिए कौन सी चीज निकालते हैं। जवानी में तो वो तो अल्लाह के लिए नहीं, वो तो दुनिया के लिए है, वो तो कमाइयां करने के लिए है। अभी तो जवानी है हमारी, अभी तो खेल कूद के दिन है हमारे, अभी तो नहीं हम इधर आएंगे। हाँ आ जाएंगे जब बूढ़े हो जाएंगे, क्या यही नहीं हम सुनते हमेशा? तो जरूरी है कि अल्लाह ताला के लिए जब कुर्बानी दी जाए ना, तो बेहतरीन चीज की दी जाए, क्योंकि हर कुर्बानी कबूल नहीं हो जाती। हम अभी आगे देखेंगे, हर एक चीज जो आप देंगे कबूल नहीं हो जाती, और आप किसी को जबरदस्ती भी कबूल नहीं करवा सकते। आप किसी को तोहफा देते हैं तो उसकी मर्जी है कि वो कबूल करे या ना करे, तो उनमें से भी एक की कबूल हुई और एक की नहीं कबूल हुई। अब आप देखें कुर्बानियां भी हम साल में जो एक दफा करते हैं, लाखों कुर्बानियां होती हैं दुनिया में, हमें नहीं पता किसकी कबूल हुई और किसकी नहीं। और हम सोचते हैं कि पता नहीं हमारी तो कबूल हो ही गई होगी, कभी इसकी फिक्र नहीं करते पता नहीं हुई कि नहीं हुई। अब यहां से हमें पता चला लम युतकब्बल मिनल आखर, की तो दोनों ने ही थी कुर्बानी, दोनों ने की थी, दोनों ने कुछ ना कुछ तो निकाला था ना, एक का कबूल हुआ और दूसरे का नहीं हुआ। तो मुतमईन हो जाने की जरूरत नहीं है कि हमने तो कुछ कर ही दिया या हमने तो जानवर कुर्बान कर दिया, हो ही गई होगी कबूल, उसकी हम फिक्र नहीं करते। और दूसरा, कुर्बानी का जो लफ्ज है ना वो काफ रौ बा से है, कुर्ब, ऐसी चीज जिससे अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल किया जाए। तो ये वो अमल होता है जिसमें इंसान की नीयत क्या होनी चाहिए, मुझे अल्लाह ताला की कुर्बत हासिल हो जाए। अब इतनी ये नीयत किसकी होती है, या सिर्फ गोश्त खाने की, या पकाने की, या पार्टी की, या लोगों को दिखाने की, हमने जी इतनी कुर्बानियां की हैं। हम देखो जी कितना महंगा जानवर लाए हैं, उसको जरा मोहल्ले में भी फिरा के दिखाएं कि लोग देख तो लें कितना खर्चा हुआ है। नहीं, ये तो कुर्ब पाने के लिए है, अल्लाह का कुर्ब पाने के लिए चाहे कुछ खर्च करना, कुछ कुछ वक्त लगाना, चाहे कुछ चीज देना, चाहे जिंदगी में से देना। तो देखें ये सारी कुर्बानी है ना, चाहे अपनी जान दे देना, ये सारी कुर्बानी है। आप अपना जो वक्त लगाते हैं ना, तो ये भी सोचा करें, ये भी एक कुर्बानी दे रहे हैं आप अपने वक्त। आप इसमें कुछ और भी कर सकते हैं, आप सब बैठे हैं, एक कुर्बानी दे रहे हैं अपने वक्त की, अपनी जिंदगी का एक हिस्सा लगा रहे हैं, अपने दिन के घंटे निकाल रहे हैं आप। लेकिन इसकी क्वालिटी जरूर देखा कीजिए, किस क्वालिटी का है और किस जज्बे के साथ है, नीयत मेरी क्या है, अल्लाह का कुर्ब या बस और कोई चीजें, शायद सर्टिफिकेट, शायद लोगों को बताना कि मैं कितना पढ़ चुकी हूं, मुझे कितना आता है। अब देखो मुझे तो यही इंफॉर्मेशन भी है, मैंने इतने सवारे पढ़ लिए हैं, तो ये तो चीजें मिल जाएंगी, लेकिन फिर अल्लाह के यहाँ कबूलियत होगी या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, तो अब क्या हुआ, जब ऐसा हो गया तो काला, उसने कहा, किसने, ये काबिल ने कहा, लअक्तुलन्नक, मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। अब काबिल बड़ा था, जब उसकी कुर्बानी कबूल नहीं हुई तो बजाय इसके कि वो ये देखता कि मैंने क्या गलती की है, मैं अपनी नीयत का जायजा लूं, मैं अपने जज्बात का जायजा लूं, मैं अपनी कुर्बानी को देखूं कि मैंने कैसी चीज अल्लाह के रास्ते में दी, अरे अल्लाह ताला क्या मुझसे नाराज तो नहीं हो गया, यानी अल्लाह नहीं चाहता कि मैं ये काम करूं जिस करने के लिए उन्होंने तो कहा था ना आदम अलैहिस्सलाम ने कि जिसकी कुर्बानी कबूल होगी उसके साथ लड़की की शादी होगी, तो अल्लाह ताला नहीं चाहता है, ये अल्लाह का फैसला है, मैं अल्लाह के फैसले को मान लूं। उसने क्या किया, उसको गुस्सा इस बात पे आया कि इसको क्यों वो लड़की मिल जाए, मैं तो तुझे कत्ल कर दूंगा, मैंने तुझे नहीं छोड़ना। उसको इतना गुस्सा आया कि अपने भाई को कह रहा है कि मैं तुझे अब जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो भाई क्या आगे से कहता है, काला, हाबील ने कहा, अब ब्रैकेट में लिखे हाबील, उसने कहा, इन्नमा यतकब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तकीन, बेशक अल्लाह ताला कबूल करता है मुत्तकीन से। कहने का मकसद क्या था कि बजाय इसके कि तुम मेरे ऊपर गुस्सा करो, भाई तुम देखो कि अल्लाह ताला ने क्यों नहीं कबूल की ये कुर्बानी, तो अल्लाह ताला मुत्तकी लोगों की कुर्बानी कबूल करता है। यानी आप, आपको अपनी नियत का जायजा लेना चाहिए, अपने जज्बे का जायजा लेना चाहिए। और तकवा क्या चीज होती है, पहले भी आपको बताया कि इंसान अल्लाह को राजी करना अपना मकसद बनाए और उसके लिए जो भी कोई नेकी कर सकता है वो करे, और अल्लाह ताला की नाराजगी से बचना उसका मकसद होना चाहिए जिंदगी का, हर बुराई से बचे जिसमें भी अल्लाह ताला की नाराजगी हो सकती है, यही बस तकवा, सिंपल सिंपल सी बात है। जिसके दिल में ये जज्बा होगा कुर्बानी करते हुए, जिंदगी गुजारते हुए, कहीं पे भी वो मुत्तकी है, तो मुत्तकी की कुर्बानी अल्लाह ताला कबूल करता है, जिसमें खौफे खुदा होता है वो उसकी कुर्बानी अल्लाह कबूल करता है, जिसको वाकई ये शौक और चाहत होती है कि अल्लाह ताला मुझसे राजी हो जाए, अल्लाह ताला उसकी कुर्बानी कबूल करता है। और ये क्या सिर्फ कुर्बानी के लिए, ये बाकी भी हर इबादत के लिए, यहाँ पे ओपन बात है। देखें इन्नमा यतकब्बलुल्लाह, ये सिर्फ नहीं कहा हमने अल्लाह कुर्बानी सिर्फ उसकी नहीं, बेशक अल्लाह ताला कबूल करता है मुत्तकियों से। और यहाँ पे हसर का कलमा आने से बहुत बड़ी बात हमें पता चल रही है कि मुत्तकी के अलावा किसी की भी नहीं कबूल करता, ये पता चल रहा है। यानी सिर्फ और सिर्फ, इन्नमा का मतलब क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ यही बात है कि अल्लाह ताला सिर्फ मुत्तकीन से कबूल करता है, ये है। यानी कबूलियत की शर्त, जब हम पूछते हैं ना कि पता नहीं कबूल हुई कि नहीं हुई, हुई कि नहीं हुई, तो असल बात हमें पता होना चाहिए कि क्राइटेरिया क्या है, क्या चीज है जो अल्लाह के यहाँ देखी जाती है किसी भी अमल को कबूल करने के लिए। वो है ये नहीं कि आपकी आपका आपने टाइम कौन सा लगाया, ये नहीं कि आपने पैसे कितने दिए, उसने तो $1 दिया, मैंने तो $1,00,000 दिया, तो जाहिर है मेरा तो कबूल होगा ही। ये नहीं देखा जाता किसकी क्वांटिटी ज्यादा है, किसने रात को टाइम लगाया, दूसरों ने तो दिन को लगाया था, ये रात को जागी रही है, ये नहीं, बल्कि तकवा आपके अंदर कितना है, इसकी फिक्र हम सबको होनी चाहिए कि कोई भी हम नेकी का काम करें तो उसके बाद इस चीज की फिक्र करते रहें कि अल्लाह कबूल हो जाए, क्योंकि हम हमें नहीं पता हमारे तकवे का क्या हाल है, और हमें नहीं पता कि कबूल हुआ भी कि नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे आया, देखिए एक पैगंबर के हैं दोनों बेटे, ये कोई मामूली बात नहीं है, पैगंबर हैं आदम अलैहिस्सलाम, उनके बेटे हैं, तो ये नहीं वो कहते हम तो नबी के बेटे हैं, हमारे तो हुआ ही होगा कबूल, हमारा तो, हम तो ये कहते ना, हम तो सैयद है, हम तो फलां फैमिली से हैं, हमारा तो कबूल नहीं होगा तो और किसका होगा। इंसान के दिल में हर वक्त ये एक फिक्र लगी रहनी चाहिए कि ए अल्लाह तूने तौफीक दी, तेरी तौफीक से कर तो लिया है, अब अल्लाह कबूल तूने करना है, अल्लाह तू कबूल कर लेना, ठीक है अल्लाह तू इस मेरे अमल को तेरी शान के मुताबिक तो नहीं है, लेकिन अल्लाह तू अपनी बारगाह में इसको कबूल कर लेना, क्योंकि देखें ये अल्लाह ताला की मर्जी है, और ऐसे ही नहीं अल्लाह किसी के अमल को रिजेक्ट करता, जरूर अंदर कोई खोट होता है, या कोई रियाकारी हो जाएगी, या कोई तकब्बुर होगा, कोई गुरूर होगा, कोई कोई ऐसी नीयत में फतूर आ गया होगा, तरीका सही नहीं होगा, कुछ ना कुछ जरूर होता है जिसकी वजह से वो रिजेक्ट हो जाता है कोई भी नेकी का काम, जो भी हम नेकी समझ के कर रहे होते हैं वो रिजेक्ट हो जाता है। हम देखें कितनी मेहनतें करते हैं, किसी भी जाहिर है नेकी भी करना कोई आसान काम तो नहीं है, लेकिन अगर हमें ये बस फिक्र तो है कि हाँ हम नेकी कर लें, लेकिन आगे ये फिक्र नहीं है ना कि ये कबूल भी हो जाए, तो ये नेक लोगों का ये तरीका नहीं होता था, उनको बहुत ज्यादा फिक्र होती थी अल्लाह कबूल कर लेना बस, हाय कबूल हो जाए हमसे। सूरह मोमिनून में भी अल्लाह ताला ने फरमाया वो लोग जो कुछ जो देते हैं, जो कुछ भी देते हैं, जो देते हैं, और उनके दिल डरते रहते हैं, उनके दिलों के अंदर वो मतलब खौफ रहता है कि वो अपने रब की तरफ लौटने वाले हैं, तो अब ये नेक लोगों की बात हो रही है। अब हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला ने पूछा था कि या रसूल अल्लाह ये वो कौन लोग हैं ये जो बुरे काम करते हैं कि उनके दिल डरते रहते हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं ये वो लोग हैं जो नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, सबका खैरात करते हैं, वो फिर भी डरते रहते हैं कि कहीं ये रिजेक्ट ना हो जाए, हमारे ये नेकियां कहीं हमारी अल्लाह ताला की बारगाह में कबूलियत से रह ना जाए, इतनी उनको फिक्र होती है। देखिए वाकई इंसान को तो पता नहीं है ना, कोई चीज भी कंफर्म तो है नहीं, हम सोच रहे हैं हाँ जी बहुत बड़े मैंने कारनामे कर लिए, आपको क्या पता, आपको क्या पता कि अल्लाह ताला के हाँ उस चीज का कोई मकाम है या नहीं है। अब बड़े बड़े जो सहाबा थे, ताबीन थे, वो इतना डरा करते थे इसी बात से, हजरत आमिर बिन अब्दुल्ला, वो उनके बारे में मिलता है वफात के वक्त रो रहे हैं, लोगों ने पूछा आप क्यों रो रहे हैं, जवाब दिया मुझे ये मालूम नहीं है मेरा कौन सा अमल कबूल होगा और कौन सा नहीं होगा, नहीं आपने अगर अमल कर भी लिया आपको कंफर्म तो नहीं है ना। अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं कि मुझे अगर ये यकीन हो जाए कि मेरा कोई अमल अल्लाह के यहाँ काबिले कबूल है और कबूल अल्लाह ने कर लिया है, तो ये वो नेमत है कि सारी जमीन सोना बन के भी मेरे कब्जे में आ जाए तो मैं इसके मुकाबले में इसको कुछ नहीं समझूंगा, यानी मुझे इतना कुछ मिल जाए कि पूरी जमीन सोना बन के भी आ जाए ना, तो मुझे अपने आमाल की कबूलियत की जितनी खुशी होगी उतनी इसकी इतना सोना मिलने की नहीं होगी। यानी उनको ये होता था पता नहीं कबूल हुए कि नहीं, एक भी अमल कबूल अल्लाह ने कर दिया तो वो तो एक खजूर को भी और पहाड़ के बराबर बना सकता है, और रिजेक्ट हो जाए तो पूरे के पूरे अमल यानी उस दिन हबा मंसूरा यानी कहा जाता है कि गर्द बना के उड़ा दिए जाएंगे पहाड़ों जितने अमल, इतने बड़े बड़े अमल, इतने ऊंचे ऊंचे अमल जिनको लोग देख के हैरान होंगे कि वाह इसके इतने बड़े अमल। अल्लाह ताला हमें माफ फरमाए, इसीलिए इस दुनिया में किसी के बारे में नहीं आप कुछ कह सकते। बज़ाहिर तो हम किसी के देख के अमल सोच सकते हैं कि हाँ जी बड़े अच्छे कारनामे कर रहा है, बहुत अच्छे बड़े काम कर रहा है, हमें क्या पता। जब तक अल्लाह ताला के पास जाके रिजल्ट ना निकल जाए उस वक्त तक हम सब खतरे में हैं। तो कोई अपने कामों को बहुत बड़ा ना समझा करें, को बहुत बड़ी चीज नहीं बन जाते हम ये छोटे छोटे काम करके। हम क्या जाने अल्लाह के हाँ कौन सी चीज है जो बच गई है और कौन सी चीज है जो कि रिजेक्ट हो चुकी है। अब इतना बड़ा ढेर है, आपको ढेर में तो नहीं पता कि कितना बचा है हमारे आमाल नामे में, कितनी चीजें हैं जो अल्लाह ताला कह दे कि हाँ मैंने एक भी उसने कबूल कर ली ना हमारी निजात हो जानी है, और अगर रिजेक्ट कर देगा तो क्या। और देखा जाए तो हमारे अमल इस काबिल नहीं है, ना हमारी नमाजें इस काबिल हैं, ना हमारी कोई सदका व खैरात ऐसे इस काबिल हैं कोई बहुत बड़ी क्वालिटी की हैं। जबकि आप देखें सहाबा कराम इतने बड़े बड़े काम करके भी कितने फिक्रमंद हैं, कितने परेशान हैं, तो हम बस फूले नहीं समाते छोटी छोटी चीजें करके, हमने तो बहुत कर लिया, मैं तो इतना करती हूँ, मैं तो ये करती हूँ, मैं तो फिर सुबह उठती हूँ तो मैंने इतना कुरान पढ़ लेती हूँ, फिर मैं इतना याद कर लेती हूँ, फिर मैं ऐसे करती हूँ, क्या अपने कारनामे हम बताएं यार, क्यों बताएं जबकि हम नहीं जानते कि इनकी वैल्यू क्या है अल्लाह की नजर में। तो काम करना ये एक बात है और इसकी कबूलियत ये दूसरी बात है, ठीक है। एक है काम करना, वो भी अल्लाह ही की तौफीक से होता है, उसके लिए भी तौफीक मांगनी चाहिए, लेकिन उस करके भी उसके बाद बहुत खुश होकर नाचने की जरूरत नहीं है, बहुत तकबर में आने की जरूरत नहीं है, लोगों को हकीर देखने की जरूरत नहीं, वो तो ये भी नहीं करते हम तो ये करते हैं। जो भी हमारे दिमागों के अंदर एक जोम होता है ना नेकी का कि फलां तो ये भी नहीं करता, अब क्या पता उसकी कोई एक नेकी अल्लाह कबूल कर ले, और मुझे क्या पता कि मेरी कोई नेकी कबूल है भी कि नहीं। अल्लाह अकबर। लइन बसत्ता इलैया यदका, अब उसी हाबील की बात की कंटिन्यूएशन है, अलबत्ता अगर बसत्ता तूने फैलाया इलैया मेरी तरफ यदका अपना हाथ, ली तक्तुलनी ताकि तू कत्ल करे मुझको, मा अना भी बासितिन यदिया इलैक, मैं नहीं हूं फैलाने वाला अपना हाथ तुम्हारी तरफ, ली अक्तुलक कि मैं कत्ल कर दूं तुझे, मैं नहीं तुझे कत्ल करने का इरादा रखता, अगर तुम मेरे कत्ल करने के दर पे हो भी, तुम मुझे कत्ल करना चाहते भी हो, तो मैं अपना हाथ नहीं उठाऊंगा तुम्हारे ऊपर। ये एक समझाने का तरीका था अब भाई को बाज रखने का, क्योंकि भाई अब इस चीज के दर पे था कि नहीं मैंने तो उसी से शादी करनी है और मेरी कुर्बानी क्यों नहीं कबूल हुई, इसलिए मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। और इतना ज्यादा उसके ऊपर ये जुनून सवार था अपनी ख्वाहिश को पूरा करने का, इस कदर वो उसके ऊपर जज्बा गालिब हो गया था कि अपने सके भाई को कह रहा कि मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। सोचें आप इस जमीन के ऊपर जो पहला खून भी हुआ वो एक भाई ने अपने भाई का किया, किसी दुश्मन के साथ नहीं हुआ, एक भाई का कत्ल करना कितनी बड़ी बात है। तो उसने जब ये कहा तो अब भाई का काम था उसको समझाना, वो नेक था। अब इसमें आप दो कैरेक्टर्स देखेंगे इस स्टोरी के अंदर, एक कैरेक्टर वो है जो जुल्म पे आमादा होता, जो हसद करने वाला था, बोझ करने वाला था, और दूसरा भाई वो है जो नेक सिफत था, शरीफ नफ्स था। उसका रिएक्शन क्या होता है, क्योंकि इस दुनिया के अंदर ये दोनों कैरेक्टर्स रहेंगे हमेशा, जालिम भी रहेगा और दूसरी तरफ नेक सिफ्त लोग भी रहेंगे, नेक फितरत लोग। अब इसने कहा कि देखो, उसने ये नहीं कहा कि तुमने मुझे कत्ल करना और मैं नहीं, और जब उसको पता चल गया कि तू ये मुझे कत्ल करने आ रहा है, अच्छा ये तो मुझे क्या कत्ल करेगा, मैं तुझे अब सीधा करता हूँ। देखिए आप देखते हैं ना, जब एक गुस्से के अंदर होता है तो दूसरा उससे ऊपर गुस्से में चला जाता है। ये मियाँ बीवी की लड़ाई में क्या होता है, एक गुस्से में होता है तो दूसरा कहता है कि मैं अभी तुझे ठीक करता हूँ, तो पहला कहता है तेरी ऐसी की तैसी, अब मैं तुझे सही करता। इस तरह से करके टिट फॉर टैट करके कहां से कहां बात पहुंच जाती है कि, यानी हैरत होती है कि ये बहुत सारी लड़ाइयां, और आज आप देखेंगे भी कि इसके अंदर हाथ किसका होता है, बहुत सारी लड़ाइयां सिर्फ एक खाने के ऊपर शुरू होती है। ये क्यों पका लिया, ये क्यों ज्यादा हो गया, वो क्यों कम हो गया, बच्चे को क्यों नहीं खाना खिलाया, या उसको ज्यादा क्यों खिला रही हो, या कुछ, यहां से स्टार्ट हुई और तलाक तक नौबत पहुंच गई, और कहां एक दूसरे का मुंह देखने को भी तैयार हैं। तो बात छोटी सी होती है जहां से शुरू होती है और फिर एस्केलेट कैसे करती है, क्योंकि जब एक गुस्से के अंदर आता है तो दूसरा कहता है मैं इससे भी तेरे से भी ज्यादा मैं गुस्सा करके दिखाता हूं, तुम क्या सोचती है मेरे मुंह में जुबान नहीं, तो तुम ये सोचते हो मेरे मुंह में जुबान नहीं तो मैं तुम्हें भी अपनी जुबान दिखाती हूँ। ये नहीं होते, इस तरह से नहीं काम चलते। आप देखिए यहाँ पे एक भाई है जो इतना कूल माइंडेड है कि वो कह रहा है कि तुम मुझे अगर कत्ल करोगी तो, ये नहीं कह रहा कि मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूं। अब तफसीरों में लिखा हुआ है कि हाबील ज्यादा ताकतवर था काबील से, लेकिन उसने ये नहीं कहा कि मैं तुझसे ज्यादा स्ट्रांग हूं, मैं तुझे बताता हूँ कत्ल कैसे होता है, मैं तुझे सीधा करता हूँ, नहीं, उसने कहा मैं नहीं तुझे कत्ल करूंगा। और आप देखें इसके अंदर एक का कत्ल का इरादा और दूसरे का कत्ल के इरादे से अपने आप को बरी जिम्मा करना, दूसरे को क्या बता रहा है कि तुम भी ऐसे ना करो, बजाय इसको ये कहने के ना कि तुम मुझे नहीं मार सकते या तुम मुझे नहीं मारोगे, और या तुम दिखाओ तो सही मार के, तुम दिखाओ मैं देखता हूं कैसे तुम मुझे मारते, ये दूसरे को प्रोवोक करना है कि करके दिखा तू। अब कई औरतें कहती हैं तलाक देख के दिखा मुझे, वो कहता मैं तुझे तलाक दे दूंगा, कहती देख के दिखा मैं देखती हूँ कैसे देता, ये तो नहीं ना बातें होती। अब वो कहता है मैं नहीं ऐसे करके दिखाऊंगा, यानी आप अगर ऐसे करेंगे तो मैंने नहीं ऐसे करना। अब इसमें बुजदिल ही नहीं है, आपको लग रहा होगा कि पता नहीं इसमें दूसरा समझे कि पता नहीं मैं बुजदिल हूं, नहीं, इसके अंदर इंसान अपने अमन पसंद होने को बताता है कि मैं ये काम नहीं कर रहा, मैं आपको नहीं हार्म करूंगा, तो इससे दूसरे का ताकि दिल पिघल जाए ना। एक कहता है मैं तुम्हें थप्पड़ मारूंगा, वो कहता है लेकिन मैं नहीं आपको कभी थप्पड़ मार सकता, जब वो दूसरा ये कहेगा तो होना क्या चाहिए, इसका दिल पिघल जाएगा कि देखो ये कितना अच्छा है, मैं इसको कह रहा हूं कि मैं तुझे मारूंगा और ये मुझे अभी किसी कह रहा है कि मैं तो नहीं आपको मारता। लेकिन जब इंसान की आंखों के ऊपर ये शहवत की पट्टी बन जाती है ना, लेकिन नफसानी ख्वाहिशात में भी ना सबसे ऊपर ये शहवत है कि इंसान लस्ट, और मर्द के लिए औरत बहुत बड़ा फितना है। वो कहते हैं ना कि जो शुरू हुआ इस दुनिया के अंदर तो जर जन और जमीन ये है फितने, तो इसमें ये नहीं कि जर और जन और जमीन ये कोई बुरी चीजें हैं या औरत कोई बुरी चीज है, बल्कि असल बात ये कि इनकी वजह से वाकई बहुत सारी फितने होते हैं, बहुत सारी लड़ाइयां होती हैं, और इसी वजह से औरत को पर्दे में रहने का कहा गया, औरत के ऊपर कई, आप जिनको सोचते हैं कि ये हमारे ऊपर पाबंदियां लगाई गई हैं, वो असल में दुनिया में फितना और फसाद खत्म करने के लिए कि एक दूसरे के दस्तों गिरेबाना हो जाए एक औरत के पीछे। और आप देखें कई कत्ल वारदात हो जाते हैं इसके पीछे, कोई उससे शादी करना चाहता है वो दूसरा भी करना चाहता है, फिर उसके बाद क्या होता है, या वो लड़की नहीं करना चाहती तो उसके बाद रोज आप ये जरायम की खबरें सुनते हैं, तो ये कहां तक चीज ले जाती है। अब उसने उसको कहा इन्नी अखाफुल्लाह रब्बल आलमीन, ये नहीं है कि मैं कोई डरपोक हूं तो इसलिए मुझे अल्लाह से डर लगता है, यानी उसको अल्लाह ताला की याद दिलाई। अब ऐसे वक्त में आप सोचें कि कोई एक इंसान बहुत ही कूल माइंडेड ही होगा तो जो उस वक्त अल्लाह को याद कर सकता है, वरना इंसान फ्लेयर अप हो जाता है कि क्यों इसने मुझे कहा, इसकी कैसे जुर्रत हुई कि ये मुझे कहेगा कि मैं तुझे कत्ल करता हूं, इसमें तो अल्लाह ताला का नाम ही लोग भूल जाते हैं। तो ये देखें उस वक्त अल्लाह ताला को याद करना और खौफे खुदा वाकई जिसके अंदर होता है वो ही अपने आप को रोक सकता है ऐसे। वो कह रहा है ना कि मैं अल्लाह से डरता हूं, तो इसके अंदर वाकई खौफे खुदा था, जब भी उसने कहा ना मैं नहीं आपके पर हाथ उठाऊंगा। अब देखिए बाज लोग इससे ले लेते हैं, अच्छा फिर उसने कहा क्या कहा मैं नहीं हाथ उठाऊंगा तो क्या वो मरने को तैयार होगी, ये बात नहीं है। देखिए एक होता है डिफेंस, दिफा करना अपना, सेल्फ डिफेंस एक अलग चीज है और इब्तिदा करना अलग चीज है। एक चीज है कि आपको पता चला कि किसको ही आपको मारने लगा, आप कहते हैं अच्छा इसने मुझे मारना है, मैं तो इससे पहले उठा के इसको मारता हूं ताकि ये भी ना मुझे मार सके। ये तो पता चला है कि शायद हमारे लिए ऊपर जादू करना चाहते हैं, हम पहले जाके उनके ऊपर जादू करा देते। पता चला आदमी ने कहा कि वो तलाक फाइल करने लगा, औरत कहती है अच्छा ये क्या फाइल करेगा, मैं जाके पहले अदालत में कर देती। तो इंसान यानी प्रोएक्टिव हो जाना कि किसी ने अभी कोई कदम भी नहीं उठाया तो वो पहले ही कह देता है कि मैं पहले कर लेता हूँ, मियाँ मैं इसको मैं मार दूंगा, ये मतलब मैं इसको क्यों नहीं जाके मार देता पहले। और दूसरी चीज है डिफेंस, दोनों में फर्क है कि आपके ऊपर कोई हमला करता है, कोई आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, मारने की कोशिश करता है, तो आपके पास पूरा राइट है अपना दिफा करने का कि आप उसको इससे बाज रखें, उसका हाथ पकड़ लें, लेकिन उसको एक तो इंसाइट ना करें, उसके लिए फाइट बैक करना बिल्कुल आपका हक है, मगर उसके अंदर पहल ना करें। ठीक है कि मुझे लग रहा है कि ये मुझे मारेगा, इससे पहले ही मैं इसको मारना शुरू कर दूं, ऐसे नहीं। अब यहां पर किस चीज की बात हो रही है, वो ये नहीं कह रहा कि मैं अपने आप को डिफेंड ही नहीं करूंगा, तुम आ जाओ मुझे मारने के लिए, मैं यहां बैठा हूं, ये लो मेरी गर्दन, नहीं कह रहा है, मैं नहीं इनिशिएट करूंगा, मैं नहीं आपके आप ऊपर हाथ उठाऊंगा, लेकिन जाहिर है जब दूसरा कुछ करेगा तो उस अपने आप को डिफेंड तो करना। जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस से हमें ये बात पता चलती है कि एक आदमी ने पूछा कि अगर एक शख्स मुझसे मेरा माल छीनना चाहता है तो मैं ऐसे क्या करूं, आपने फरमाया उसको खुदा का खौफ दिलाओ, जैसे यहाँ पे हाबील ने दिलाया, वो बोला अगर वो ना माने, यानी वो दावा खौफ भी दिलाया तो उसको कोई ना असर हो, आपने फरमाया फिर अपने इर्द गिर्द के लोगों से मुकाबले के लिए मदद करो, मांगो, यानी लोगों को फिर आप कहते हैं मेरी मदद करो, पुकारते हैं हेल्प के लिए कि देखो ये मेरे साथ ऐसे कर रहा है। तो कहने लगा कि अगर मेरे इर्द गिर्द वाले लोग भी ना कोई हो जो मेरी मदद करें, आपने फरमाया फिर हुकूमत से मदद चाहो, जैसे आप पुलिस को बुलाते हैं या इस तरह करते। अब उस सवाल करने वाले ने कहा कि अगर ऐसा भी ना हो सके जैसे कि हमारे मुल्कों में होता है, तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर अपने माल की हिफाजत के लिए लड़ो, हत्ता कि अपने माल को बचा लो या शहीद हो जाओ, यानी फिर जो अपने माल की या अपनी जान की या अपनी इज्जत की हिफाजत के लिए फाइट बैक करता है, उसको जरूरी है कि वो फाइट बैक करे, फाइट बैक करता है तो अब या तो अपने चीज को बचा लेगा या फिर उसकी जान चली जाएगी, तो अगर जान चली गई ना तो वो भी शहीद है जो अपने माल की हिफाजत के अंदर जान दे, या अपनी जान का दिफा करने के लिए, अपनी जान को बचाने के लिए वो चला गया दुनिया से, वो भी शहीद है। ठीक है, तो ये नहीं आप कह सकते उसने अपना दिफा क्यों नहीं किया, उसको चाहिए था वो लड़ता, वो उसको चाहिए था ये करता, नहीं। अब आप यहां से ये देख सकते हैं कि वो अपने भाई को समझा रहा है कि तुम ये इस चीज से बाज आ जाओ, तो इसका मतलब है कि जो कोई इस दुनिया के अंदर ऐसे लोगों के साथ जिसका वास्ता पड़ता है, जो कोई ऐसे लोगों के साथ इंटरेक्ट करता हो और उसको अंदेशा हो कि ये उसको नुकसान देंगे, तो उनको खुदा खौफी दिलाए, अल्लाह ही का डर है जो किसी को शर से बाज रख सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, तो मतलब ये चीज अगर किसी में खौफ खुदा होगा ना तो यही चीज होगी जो उसको उसके जोश को ठंडा कर सकती है। इन्नी उरीदू, अब देखिए समझाता वो जा रहा है, ये बाज नहीं आ रहा लेकिन वो उसको समझा रहा है, कह रहा है अब सख्ती से कह रहा है, इन्नी उरीदू अंतबू अब इसमी व इसमी का फतकूना मिना साबिन नार, अगर नहीं तू बाज आता फिर ठीक है, फिर तू पलटे, मैं चाहता हूं कि फिर तू पलटे साथ मेरे गुनाह के भी और अपने गुनाह के भी, तो तू हो जाएगा आग वालों में से, यानी इसका अंजाम आग है, आग से भी डरा रहा है कि इसका अंजाम क्या, खुदा का खौफ नहीं है तो तू आग से ही डर जा, कि तू फिर तू पलटेगा साथ मेरे गुनाह पे भी, यानी मुझे कत्ल करके तेरे ऊपर गुनाह होगा और तेरे अपने भी गुनाह जो पहले से हैं वो भी हैं तेरे ऊपर, तो फिर तू आग वालों में से हो जाएगा। तो ठीक है, मैं तो फिर चाहता हूँ फिर ठीक है तू अपने ऊपर ये ले ले गुनाह। और दालिक का जजा हो जालिमी, तो यही जजा है जालिमों की भी, यानी जालिम जो होता है ना, जो भी जुल्म करने वाला है, इस आयत से पता चला उसका अंजाम आग है बस, और कुछ नहीं है, आग में उसको जाना होगा। इस दुनिया से जुल्म करके ना कोई बच नहीं सकता। यहाँ पे जुल्म करने वाले सोचते हैं कि आज हमारे हाथ ताकतवर हैं, हमें कोई पूछने वाला नहीं है, जिसके ऊपर हम जुल्म कर रहे हैं इसके आगे पीछे कोई नहीं है, कौन हमें रोक सकता है और कौन हमें देख रहा है। तो एक अल्लाह की जात है, उसने अपने भाई को समझाया, इससे पता चलता है कि समझाना जरूरी है। जब आप किसी को शर में देखें ना, तो आपकी जिम्मेदारी है कि उसको समझाएं अपनी तरफ से पूरी। अब देखें उसने आगे नहीं सुनी, लेकिन उसने तो समझाया ना भाई ने, तो आपकी जिम्मेदारी क्या है कि आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके हुज्जत तमाम करें। लेकिन ये चीजें वाकई बड़ी मुश्किल होती हैं ऐसे वक्त में, खास तौर पे अगर कोई आपके साथ कोई चीज ऐसी बुराई करने का इरादा रखता हो, उस वक्त उसको कुछ खौफे खुदा दिलाना या उसको कुछ समझाना, ये तो और भी मुश्किल होता है, क्योंकि अक्सर लोग तो हम अपने आप पे काबू ही नहीं पा सकते थे। यूं ही हमें पता चल जाए कि अच्छा तू हमारे लिए ये इरादा रखता है, तेरी ये नीयत है मेरे बारे में, तू मेरे से इतनी दुश्मनी रखता है, तो उस वक्त क्या फिर हाल हो जाता है। और यहां से पता चलता है अल्लाह अकबर कि इंसान ना अगर अल्लाह की तकसीम पे राजी हो जाए ना, तो बहुत सारी बुराइयों से बच सकता है। लेकिन जब हम अल्लाह की तकसीम पे राजी नहीं होते ना, कि अल्लाह ने मेरे लिए जो फैसला कर दिया है मैं इस पे राजी हूं, अब उसको पता चल गया था कि मेरी कुर्बानी कबूल नहीं हुई, इसका मतलब अल्लाह ताला नहीं चाहता है कि मैं इस लड़की से शादी करूं, तो बस मुझे इसको अपनी अल्लाह की तकदीर का फैसला समझ के कबूल कर लेना चाहिए और मैं इसके अंदर कोई और स्टेप ना उठाऊं। उसने कहा नहीं, मेरी ख्वाहिश कैसे ना पूरी हो। तभी ये बात है ना कि जब इंसान अपनी ख्वाहिश को अल्लाह की रजा के, अगर एक है मेरी रजा और एक है अल्लाह की रजा, अल्लाह की रजा को इंसान मुकद्दम रखे, ना कि मेरी पूरी हो, अल्लाह की बात पूरी हो के नहीं हो, ये नहीं होना चाहिए। और यहां भी यही हुआ कि एक अल्लाह का फैसला और एक उसका फैसला, उसने कहा कि अल्लाह की रजा को मैं नहीं कुछ समझता, मैंने तो अपना काम पूरा करना चाहिए, अब अपने भाई को कत्ल करके करूं। और जब इंसान याद रखे अल्लाह की तकसीम पे राजी नहीं होता ना उसके फैसलों पर, तब हसद आता है, इसको क्यों मिल गया। अब सोचने की बात होती ये है कि इंसान ये सोचे कि इसको तो अल्लाह ने दिया, अगर इसको अल्लाह ना देता तो ये तो नहीं कभी पा सकता था, इसको अल्लाह ने दिया और मेरे लिए जो अल्लाह ने लिखा है वो मुझे मिला है, तो फैसला किसका है, अल्लाह का फैसला है ना, फिर मैं इससे क्यों दुश्मनी रखूं। इसके बावजूद हम लोगों से इतना हसद करते हैं कि उनको कोई मिल जाए, कोई चीज, कोई दुनिया का ओहदा मिल जाए, पैसा ज्यादा मिल जाए, घर उसने अच्छा ले लिया, उसकी शादी अच्छी जगह हो गई, उसके बच्चे कोई अच्छे बड़े ओहदों पे चले गए, अच्छे कुछ बन गए, अच्छी तालीम में चले गए, उसने कुछ बना लिया, कोई किसी कोई गाड़ी नहीं खरीद लेता है, किसी को जॉब में प्रमोशन कोई मिल जाती है, कोई अच्छी जगह कहीं लग जाता है, किसी को वजारत मिल गई, कोई इलेक्शन जीत गया, इतने हसद में मुब्तला हो जाते हैं, दिल में जलन ऐसी होती है कि फिर उसकी अब कत्ल तो कर नहीं सकते, अब कत्ल तक तो नहीं मतलब जरूरत होती, तो फिर क्या होता है उससे पीछे आ जाए, वो भी कत्ल के बराबर ही है किसी को करना, गीबतें, चुगलियां, बहतान, उसकी शिकायतें, उसके साथ बुग्ज रखना, जगह जगह उसको बदनाम करते फिरना, उसकी बुराइयां करते फिरना, जिधर बैठना हाँ ये तो ऐसे हैं, हमें तो इनका पता है, ये है ये चीजें तब आती हैं जब अंदर कहीं हसद होता है, ये ऐसे ही नहीं आ जाते। और हसद कब आया, ये उसके पीछे क्या था, अल्लाह की तकसीम पे राजी। जब हम राजी हो जाएं, अल्लाह जो तुमने मेरे नसीब में लिख दिया मैं इससे राजी हूं, फिर किसी का भी बुरा नहीं लगेगा, उसको भी जो अल्लाह ने उसके नसीब में लिखा उसको मिल गया, जो मेरे में लिखा मुझे मिल गया, फिर क्या मसला है। लेकिन मसले यहां से शुरू होते हैं, और आज जिंदगियों में देख लें, खानदानों में देख लें, दोस्त अहबाब में देख लें, दूसरों से नहीं हम हसद करते, कोई ये हसद नहीं करेगा फलां क्यों सदर बन गया, अब वो सदर बन गया उसे हसद हम कर रहे हैं, ऐसे नहीं कभी होता।
हाँ अपने प्यारों को देख के, जो अपने खून के रिश्ते होते हैं, जो अपने सके होते हैं, अपनी फैमिलीज होती हैं, जो अपने जानने वाले इर्द गिर्द होते हैं, दोस्त अहबाब, उनमें हसद करते हैं हम। यानी अपने ही प्यारों को अपने हसद की आग से जलाते हैं। इन शरी हासिद निजा हसद है ना, और ऐसे ही नहीं कहा गया। और ख्वाहिश नफ्स, देखिए ये ख्वाहिश नफ्स इंसान को कहां तक पहुंचा देती है। इंसान अपनी ख्वाहिशात के आगे खुद ही हार मान जाता है, और क्या क्या करने को तैयार हो जाता है। अल्लाह, और ख्वाहिश नफ्स इंसान को कहते हैं ना अंधा कर देती है, तो वाकई अंधा कर देती है। जब ख्वाहिश में इंसान हद से बढ़ता है, तो फिर चाहे वो माल की ख्वाहिश है, चाहे वो औरत की ख्वाहिश है, चाहे वो ओहदे की ख्वाहिश है, फिर वो कहता है कि नहीं, अब चाहे बाय हुक और बाय क्रुक मुझे किसी की जान भी लेनी पड़े, तब भी मैं पीछे नहीं हटूंगा, मुझे कुछ मर्जी करना पड़ जाए। आप देख लें, इसीलिए आप दुनिया में देखते हैं ना, जब माल की ख्वाहिश हद से बढ़ जाती है, तो फिर क्या होता है, बूढ़े वालदेन भी है ना, तो उनको भी ब्लैकमेल करके उनसे सिग्नेचर करवाते हैं जायदादों पे। बहनों की शादियां नहीं करते कि विरासत बाहर चली जाएगी, पसंद की शादी करने के लिए कत्ल कर देते हैं। ये ख्वाहिश नफ्सी तो है, और ये ख्वाहिश नफ्स हर एक की अलग अलग, उसने यहाँ पे उसने शादी के लिए किया, कोई माल के लिए करता है, जायदादों के लिए करते हैं, कोई किसी चीज के लिए करता है। ख्वाहिश नफ्सी है ना, इंसान को कहां से कहां फेंक देती है। इतना अपनी ख्वाहिशात को सर पे ना चढ़ाएं कि वो आपको कंट्रोल करने लगे, आप अपनी ख्वाहिश को कंट्रोल करें। अल्लाह की तकसीम पर राजी रहने से इंसान की ख्वाहिशात भी कंट्रोल हो जाती है। अल्लाह ने मेरी तकदीर में अगर लिखा होगा तो कहीं नहीं जाता, और अगर नहीं अल्लाह ने मेरे लिए लिखा तो आप अल्लाह से लड़ तो नहीं सकते। इसको मान लें, उसमें अल्लाह आपसे राजी हो जाएगा, और कयामत के दिन इससे कहीं ज्यादा बढ़ के इनामात अता फरमाएगा इसमें कि तुम अल्लाह की रजा पे राजी हो गए। गुरबा मसाकिन को कितना कुछ मिलेगा उस दिन, 500 साल पहले वो जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। तो ये इसलिए कि जो सबर करे और जो अल्लाह ने उसके लिए लिख दिया उसके ऊपर राजी हो जाए, इसके ऊपर है रिवॉर्ड। और अगर इंसान का नहीं, मैंने इस दुनिया को जन्नत बनाने, जो मैंने कह दिया वैसे ही होना चाहिए, मैंने जैसे चाहा था वहां मेरे बच्चे की शादी नहीं हुई, किसी और ने कर ली, अब उससे साल जल जल के भुन भुन के, कभी कभी होता है खानदानों के अंदर किसी बच्चे के साथ आप चाहते हैं आपके बच्चे की शादी हो जाए, उन्होंने इनकार कर दिया, अब सारी जिंदगी उनकी जान नहीं छोड़नी। तो ये अब इसको क्या सोचना क्या चाहिए कि नहीं, हम इसकी तकदीर में नहीं लिखा हुआ था, लेकिन इतना हसद करते हैं कि फिर जहां उसकी हो जाती है फिर सारा वक्त उनके खिलाफ कुछ ना कुछ बुनते रहते, और बाज सिर्फ चुगलियों और गिबतों और बोतानों तक नहीं रहते, वो आगे जादू टूनों तक चले जाते हैं। अल्लाह ताला ने ये स्टोरी बताई है ना, इसके अंदर बहुत सबक है हमारे लिए, इतने सबक हैं इसके अंदर। ये जो हसद के जज्बात आते हैं, जो जो ख्वाहिश नफ्स इंसान की उसके ऊपर तारी हो जाती है, ऐसे उसको पागल कर देती है, गुस्सा इंसान को कहां तक पहुंचा देता है, फिर इसी तरह अल्लाह ताला के जो फैसले उनके ऊपर राजी ना होना इंसान को किधर हद तक कर देता है। अब भाई समझा रहा है, समझाने पे भी कोई असर नहीं है। आप देखें इस भाई के अंदर, जो हम कहते तो है ना सारे कि हमारे अंदर बड़ा खौफ है खुदा है, मैं तो जी अल्लाह से बड़ा डरती हूँ। अल्लाह से डरना पता है कब पता चलता है, ये कागज पे लिखना बड़ा आसान है कि हम नोट्स में लिख रहे हैं ये, लेकिन तब पता चलेगा मेरे अंदर कितना खौफ है खुदा है, जिस वक्त प्रैक्टिकल लाइफ में मैं अपने बर्ताव करूंगी दूसरों के साथ, तब पता चलेगा मैंने ये कितना सीखा, मेरे अंदर कितना है खौफ है खुदा, और मैंने इस कहानी से क्या सबक लिया, तब पता चलेगा। प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल लाइफ में आके फिर हम फेल हो जाते। तो अब वो देखें उसको ठंडा करने की कोशिश कर रहा है, ना कि जलती पे आग। अब बार दफा हम समझा क्या रहे होते हैं, हम औरतों के साथ तो खास तौर पे ज्यादा ये मामला होता है कि आदमी गुस्से में आता है, तो अभी ये हमारा समझाने का अंदाज, ऐसा है कि वो जो जलती पे आग से तेल डाल रहे हैं और उसको ज्यादा भड़काते जा रहे हैं, तो वो ऐसा होता है कि दूसरे को उस वक्त ठंडा किया जाए, खुद नरम पड़ जाए। जैसे कि यहां पे उसने कहा मैं नहीं अपना हाथ उठाऊंगा आपके ऊपर, खुद नरम पड़ गया ना, एक को नरम पढ़ना पड़ता है, यानी कि दूसरा भी मुकाबले पे खड़ा हो जाए, दिखाता हूं मैं तुम्हें, तो वो फिर क्या होगा, बात कितनी आगे चली जाएगी। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। तिलावत सुनिए।
قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين